आज पांच उत्सव हैं। एक तो गोपाष्टमी और दूसरा गोष्ठाष्टमी, तो इनकी चर्चा करके इसके बाद फिर तीन जो आचार्यों के तिरुभाव हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के दिन गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी का मतलब है कि आज के दिन भगवान कृष्ण को गौओं का पालक बनाया गया। आज के दिन गोपाल, तो आज के दिन से भगवान गोपाल कहलाए। इसके पहले वे गोपाल नहीं थे, क्या थे? वत्स्यपाल। वत्स्यपाल, उनको अनुमति नहीं थी गौओं को चराने की। उनको अनुमति थी केवल बछड़े चराने की, और बछड़े गोकुल के आसपास चराओ, दूर नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण को दूर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज के दिन भगवान को गोपाल बनाया गया। तो उस घटना की हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले गोष्ठाष्टमी की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये त्योहार तो गोष्ठाष्टमी का था। और चूंकि इस दिन भगवान कृष्ण को फिर गोपाल बनाया गया, तो इसलिए फिर ये दिन जो है गोपाष्टमी भी कहलाया। तो 5000 साल पहले की घटना है जब ये दिन गोपाष्टमी कहलाया, लेकिन उससे भी पहले ये दिन था गोष्ठाष्टमी का। तो गोष्ठाष्टमी का मतलब क्या है? हमारा जो वैष्णव कैलेंडर है तो उसमें लिखा हुआ है कि गोष्ठाष्टमी के दिन क्या होता है, गौशाला को स्वच्छ किया जाता है, गौओं की पूजा की जाती है, और भगवान को अर्पित जो प्रसाद है वो भक्त लोग गौओं को आज के दिन खिलाते हैं। तो गोष्ठाष्टमी का मतलब क्या हुआ? गोष्ठ की सफाई। तो साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कि गोष्ठ की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए। गोष्ठ की सफाई करना रोज जरूरी नहीं है। गोष्ठ का मतलब गौशाला, जहां गौएं रहती हैं। तो रोज गोष्ठ की सफाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर गौओं का मलमूत्र होता है। तो गौओं का मलमूत्र इतना पवित्र है कि उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। गाय के मलमूत्र से पूजा का स्थान भी स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। इसलिए गोष्ठ की रोज सफाई करने की जरूरत नहीं है। गोष्ठ का मतलब क्या है? वहां पर गौएं खाती भी हैं और गौएं मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, है ना? लेकिन वो स्थान पवित्र है। जबकि मनुष्यों के लिए जो है अलग स्थान होता है। मलमूत्र त्यागने का अलग है, खाने का अलग है। और जहां मलमूत्र त्यागते हैं वहां रोज सफाई होती है मनुष्यों के लिए, लेकिन गौओं के लिए जो है उसी स्थान में खाती हैं, वहीं मलमूत्र त्यागती हैं, लेकिन वो पवित्र है, उसकी सफाई करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो है किसी प्रकार के बीमारी के जो है तत्व नहीं होते गौशाला में। इसी साल में एक दिन जो है बनाया गया है कि जो गोष्ठ की अच्छी प्रकार से सफाई हो। तो इस प्रकार से ये गोष्ठाष्टमी का दिन था जबकि ब्रज में सफाई अभियान हुआ। लेकिन इस दिन फिर जो है भगवान कृष्ण को गोप बनाया गया, गोपाल बनाया गया। तो एक विशेष ये जो है घटना है। तो ये जो है घटना माता यशोदा को प्रिय नहीं है। आप समझ रहे हैं, माता यशोदा को और नंद महाराज को ये प्रिय घटना नहीं है, उनके लिए बड़ी दुखद घटना है। क्यों? यशोदा और नंद के लिए क्यों दुख है? क्योंकि वो वन में जाएंगे, घर से दूर जाएंगे, बिरह का कष्ट होगा। और किसके लिए दुखद घटना है? गोपियों के लिए दुखद घटना है, है ना? कि दिन भर कृष्ण को देखेंगे नहीं है? और उनके लिए क्या है? या साम युग सत्य में क्षणम अपि युग सत्य में या साम ये ने बिना भगवत। तो एक क्षण भी जो है 100 युगों के समान लगता है गोपियों के लिए। तो गोपाष्टमी का जो महोत्सव है ये जो है गोपियों के लिए बहुत दुखदायी है, माता यशोदा के लिए दुखदायी है, नंद महाराज के लिए दुखदायी है, लेकिन किसके लिए आनंद वर्धक है, आनंददायक? गौओं के लिए। और गोप बालकों के लिए, कृष्ण के शाखाओं के लिए, ये बहुत आनंद वर्धक है और कृष्ण के लिए भी आनंद है कृष्ण के लिए आनंद वर्धक है। तो ये जो घटना है गोपाष्टमी की, तो इस दिन हुआ क्या कि भगवान कृष्ण की इच्छा हुई गौएं चराने की है? तो तैयार हो गए, निकले घर से गौएं चराने के लिए। और नंद महाराज ने जब देखा कि कृष्ण गौएं चराना चाहते हैं, तो नंद तो कृष्ण की सुरक्षा के कारण और कृष्ण के सुख के लिए ही उन्होंने कहा कि वत्स तुम नहीं चराओगे गौएं। लेकिन उसमें कृष्ण को सुख नहीं मिला। नंद महाराज तो कृष्ण के सुख और सुरक्षा के लिए कृष्ण को मना करते हैं कि तुम गौएं चराने नहीं जाओगे वन में। लेकिन कृष्ण को बहुत दुख हुआ इस बात से, अभी कुछ बोले नहीं और एक कोने में जाकर के रोने लगे कृष्ण। तब नंद को जो है लगा कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो कृष्ण को जो है बहुत दुख हो रहा है। तो नंद जो है कृष्ण के पास जाते हैं कि वत्स तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तुम गौएं चराना चाहते हो। तो जब कृष्ण जो है इच्छा प्रकट करते हैं गौएं चराने की, तो आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं दूसरे गोपों से जो है विचार विमर्श करता हूं कि तुमको गौएं चराने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए। तो फिर जब बाहर निकले नंद महाराज, तो गोपों ने भी बताया और नंद जी भी नहीं देखा, नंद जी ने भी देखा, क्या देखा कि गौएं नहीं जा रही हैं। आज के दिन तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, गौएं जो है जंगल में जाती थी और कभी कोई अगर उनके साथ ना जाए रक्षक, तो भी गौएं अपने आप चली जाती थी वन में और वन से ठीक समय पर वापस आ भी जाती थी। कोई जो बड़े गोप हैं वो चराते थे गौओं को, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी कि कोई जाए गौओं के साथ। अगर गौओं के साथ कोई नहीं जाए तो फिर गौएं अपने समय पर उनको खोल दिया जाए तो जानती हैं कि उनको जाना है जंगल में, चली जाती थी और अपने शाम के समय जो है अपना गोधूली की बेला में वापस आ जाती थी। गौओं को समय का बहुत ज्ञान रहता है, तो ठीक समय पर वापस आ जाती थी। इन आज के दिन तो बड़े बड़े गोप गौओं को हांक रहे हैं पीछे से, तो भी गौएं नहीं आ रही हैं और रभा रही हैं और बार बार लौट करके आ रही हैं। तो फिर नंद महाराज ने देखा कि दोनों तरफ से दबाव, यहाँ कृष्ण का भी दबाव है कि कृष्ण बहुत दुखी हैं और यहाँ गौओं का भी दबाव पड़ रहा है, गौएं भी बहुत दुखी हैं। तो फिर बेबस होकर के नंद महाराज ने अनुमति दी कृष्ण को वत्सपाल से गोपाल बनने के लिए। तो ये जो उत्सव है गोपाष्टमी का, गोविंद लीलामृत में काफी विस्तार से वर्णन है। और माता यशोदा को तो बहुत चिंता है, सबसे ज्यादा चिंता सबसे ज्यादा दुख तो माता यशोदा को है। तो बलराम जी से भी कहती हैं और दूसरे सखाओं से भी कहती हैं कि कृष्ण की सुरक्षा रखना, क्योंकि कृष्ण अपनी सुरक्षा नहीं रखता है, कृष्ण को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं होती है। और ये जो है जहां मर्जी हो चला जाता है और ये संकट नहीं देखता है कि इसके ऊपर कहां संकट, आगे पीछे कहां संकट है, ये कुछ देखता नहीं है। तो माता यशोदा को बहुत चिंता है। और फिर कृष्ण के लिए एक छत्र और एक जोड़ी पादुका माता यशोदा देती हैं कि देखो धूप लगेगी तुमको तो तुम्हारे ये छत्र है धूप से रक्षा करने के लिए, और पैरों के लिए कंकण और कांटे हैं जंगल में, जंगल में क्या होते हैं कंकण और कांटे होते हैं, तो ये पैरों को जो है ना तकलीफ देंगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए पादुकाएं हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ना मना करते हैं, भगवान कृष्ण मना करते हैं। और भगवान कृष्ण जो है इसमें एक कारण बतलाते हैं कि मैं इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि हम चूंकि गौओं के सेवक हैं, तो शिष्टाचार क्या है सेवक के लिए? शिष्टाचार ये है कि स्वामी से ज्यादा किसी प्रकार की सुख सुविधा स्वीकार ना करें, ये सेवक के लिए शिष्टाचार है। वो कभी भी स्वामी के बराबर आसन पर नहीं बैठता है और भोजन भी वैसा नहीं करता है, جیسا مالک کرتا ہے, وہ ہمیشہ جو ہے مالک کے نیچے رہتا ہے. تو بھگوان کہتے ہیں کہ ہم گوؤں کے سیوک ہیں, چونکہ گوؤں چھاتا استعمال نہیں کرتے ہیں اور جوتے استعمال نہیں کرتے ہیں, تو ہم کیسے چھاتا اور جوتے استعمال کریں. بھگوان کرشن ماتا یشودا کو ترک دیتے ہیں. تو ماتا یشودا کہتے ہیں کہ بالک تمہاری رکشا کیسے ہوگی, گوؤں کی تو رکشا ہو رہی ہے, جیسے بھی ہو ان کے پیروں میں جوتے بنے ہیں, گوؤں ہیں وہ جوتوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں. گوؤں کے جو کھور ہیں وہ اتنے کڑے ہوتے ہیں, کٹھور ہوتے ہیں, ایک پرکار سے جوتے پہنے ہی وہ جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں, ان کو جوتے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور چھتر کی بھی ان کو آوشیکتا نہیں ہے, کہ ان کے شریر میں بال ہیں ان سے سرکشا ہوتی ہے, یا ان کی جو توچا ہے وہ بھی ایسی ہے کہ دھوپ سے اتنا کشٹ نہیں ہوتا, لیکن تمہیں تو کشٹ ہوگا اور تمہاری تو جو ہے سرکشا نہیں ہوگی بنا جوتوں کے بنا چھتر کے. تو بھگوان کرشن جو ہے ایک بڑا ہی پرسدھ جو ہے واقعہ بولتے ہیں, وہ ہے دھرمو رکشتی رکشتہ. تو اس میں پورا شلوک ہے گوبند لیلامرت میں, تو اس میں انتم جو ہے شلوک کے انتم جو شبد ہیں دھرمو رکشتی رکشتہ, تو اس کا مطلب کیا ہے, بھگوان کرشن ماتا یشودا کو آشاسن دیتے ہیں کہ اگر ہم دھرم کی رکشا کریں گے تو دھرم ہماری رکشا کرے گا. ہمارا دھرم کیا ہے, گوؤں کی سیوا کرنا. چونکہ ہمارا دھرم ہے گوؤں کی سیوا کرنا, تو پھر اس سیوا دھرم کے دوارا ہی ہماری رکشا ہوگی. ہم اپنے سیوا کے دھرم کی رکشا کریں, ہمارے سیوا کے دھرم کی رکشا نہیں ہوگی, ہمارا سیوا دھرم نشٹ ہو جائے گا اگر ہم کیا کریں گے, جوتے پہنیں گے اور چھاتا دھارن کریں گے. تو خیر یہ کوئی ایسی شکشا نہیں ہے بھگوان کرشن کی جو ہے وہ بھگوت گیتا میں ایسی شکشا دے رہے ہوں. یہ ماتا یشودا کو انہوں نے جو ہے نا اس پرکار سے سمجھا کر کے شانت کر دیا ماتا یشودا کو. لیکن ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے نا شکشا جو ہے نا آج کے مانو سماج کے لیے ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ماتا یشودا کو بھگوان نے اس پرکار سے سانتونا دی کہ ہم گوؤں کے سیوک ہیں اور گوؤں کی رکشا کریں گے تو ہماری رکشا ہوگی. اب گوؤں کے مہتو کے بارے میں اور گوؤں کی رکشا کے بارے میں پربھوپاد نے بھی جو ہے کئی استھانوں پر کہا ہے, اور گائے کے مہتو کو بہت جو ہے پربھوپاد نے جوڑ دیا ہے. تو بھگوت گیتا کے بھی ادھیائے 14 کا شلوک سنکھیا 16 ہے, اس کے تاتپر میں پربھوپاد لکھتے ہیں کہ گووھ بہت بڑا پاپ ہے. گووھ سمست پرکار کے پشوؤں میں سے گووھ سرواधिک ادھم ہے, کیونکہ گائے ہمیں دودھ دے کر سبھی پرکار کا سکھ پردان کرنے والی ہے. گووھ ایک پرکار سے سب سے نکرشت اجیان کرم ہے. ویدک ساہتیہ میں رگ وید 9:4-64 یہ منتر ہے, گو بھی پریڑت مترم سوچت کرتا ہے کہ جو ویکتی دودھ پی کر گائے کو مارنا چاہتا ہے وہ سب سے بڑے اگیان میں رہتا ہے. ویدک گرنتوں میں وشنو پوران میں 1:19-65 ایک پرارتھنا بھی ہے جس پرکار ہے بہت پرسدھ ہے, نمو برہمن دیوائے گو برہمن ہتائے چ جگد ہتائے کرشنائے گووندائے نمو نمہ. ہے پربھو آپ گوؤں تتھا برہمنوں کے ہتیسی ہیں اور آپ سمست مانو سماج تتھا وشو کے ہتیسی ہیں. اس پرارتھنا کا تاتپر یہ ہے کہ گایوں تتھا برہمنوں کی رکشا کا وشیش الیکھ ہے. برہمن آدھیاتمک شکشا کے پرتیک ہیں اور گوؤں مہتوپورن بھوجن کی. برہمن آدھیاتمک شکشا دیتے ہیں اور گوؤں ایسا مہتوپورن بھوجن دیتے ہیں جس سے ہم اس آدھیاتمک شکشا کو سمجھ سکیں, جسے دونوں کی پربھوپاد آوشیکتا بتاتے ہیں گوؤں برہمنوں کی. گوؤں کے دودھ سے جو ہمارے دماغ کے تنتو سوکھم تنتو ہیں وہ پشٹ ہوتے ہیں, جن سے کہ ہم گیان سمجھ سکیں. نہیں تو برہمن جو آدھیاتمک گیان دیں گے ہم سمجھیں کیسے, تو ہمارے تنتو بھی تو ہونا چاہیے. تو گو برہمن ہتائے چ, تو پربھوپاد لکھتے ہیں ہاں اتے ان دونوں جیووں کی یعنی برہمنوں تتھا گایوں کو पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। यह है आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। जिनको आजकल कहा जाता है कि भाई विकसित देश हैं ये, एडवांस्ड कंट्रीज हैं, है ना, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि एडवांसमेंट कर रहे हैं किसमें, पशुओं के मार्ग में, पशुओं के रूप में जन्म लेने में उन्नति कर रहे हैं ये लोग। तो ये सभ्यता क्या है, पशु बनने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। आगे जरूर बढ़ रहे हैं ये देश, इन किस रास्ते में, पशु बनने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महान संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। अब कुछ विवरण हमने ब्रह्म विवर्त पुराण से निकाला था कि हत्या, कई प्रकार की हत्या होती है, इसमें गो हत्या कितनी बड़ी हत्या है। तो बताया गया है कि एक तो छोटी हत्या होती है, क्या, हिंसक जंतु की हत्या करना, यह भी हत्या तो है, बहुत थोड़ा पाप लगता है, बहुत थोड़ा पाप लगता है, तो इसको आप एक यूनिट मान लो, एक इकाई मान लो इस हत्या को, किसी हिंसक जंतु की हत्या की, तो ये जरूरी भी होती है लेकिन इसमें भी कुछ दोष तो लगता है। तो इससे आप जो है ना जब गणना करेंगे दूसरे दूसरे हत्याओं की, तो देखिए गो हत्या कितनी बड़ी हत्या है। एक अहिंसक क्षुद्र जंतु की हत्या ये 100 हत्या के बराबर है। हत्या मतलब हिंसक जीव की, किसी सर्प की आपने हत्या कर दी, हिंसक है, जरूरी भी है, लेकिन इस प्रकार से 100 हत्या के बराबर एक अहिंसक क्षुद्र जंतु, छोटा सा जीव है जो हिंसा नहीं कर रहा है, आपने उसको मार दिया, जैसे मान लो चींटी को मार दिया, तो ये 100 हत्या के बराबर हो गए। फिर विशिष्ट पशु की हत्या, जो विशेष बड़ा पशु है तो उसकी हत्या करना, ये जो है उससे 100 गुनी है, मतलब 10,000 हत्या के बराबर है ये हत्या। फिर म्लेच्छ मनुष्य, मनुष्य में बहुत निम्न, म्लेच्छ मतलब जो हमेशा अशुद्ध रहता है ना, शूद्र से भी नीचे है म्लेच्छ, इसकी हत्या जो है 10,00,000 हत्या के बराबर, ठीक है। फिर इससे भी बड़ी हत्या है सत्शूद्र, शूद्र है यानी सेवक है, अच्छा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, तो कोई उसकी हत्या कर देता है, तो ये उससे भी 100 गुनी बड़ी है, यानी 10,00,000,000 हत्या के बराबर है वो। और फिर इससे भी जो है 100 गुनी हत्या है, क्या, गौ की हत्या, तो एक गौ की हत्या 10,00,000,000,000 हत्या के बराबर, आप समझ रहे हैं, एक गौ हत्या कितना बड़ा जो है ये पाप होता है गो हत्या से, तो इससे हम समझ सकते हैं। और ये जो वृंदावन है ये गोपों का स्थान है, जो गौओं का पालन करते हैं, तो गर्ग सिंधा में लिखा है कि गोप जाति जो है सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य में गोप जाति सबसे श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि गोप सदा गौओं का पालन करते हैं और गोरज की गंगा में नहाते हैं। गोरज मतलब गौओं के खुरों से जो धूल उड़ती है उसमें नहाते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं, गोरज का स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है, इससे पता चलता है गौओं का कितना महत्व है और गोपों का कितना महत्व है। गापालयन्ति सततं रजसो गवां च गंगां स्पृशन्ति च जपन्ति गवां सुनाम्नाम् प्रेक्षन्ति हर्मिशमलं सुमुखं गवां च जाति परा न विदिता भुवि गोपे जाति। तो इतनी चर्चा हमने की है गोष्ठाष्टमी की और गोपाष्टमी की। अब तीन तिरुभाव हैं तो इनकी याद में हम ये भजन गाएंगे, तिरुभाव वाला भजन गाएंगे। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर प्रभु को था दिला आचार्य ठाकुर कहा मोरा रूप कहा सनातन कहा दास रघु नाथ पति पावन कहा मोरा भट्ट जुग कहा कबीरा एक काल को था गिला गोरा नटराज पाषाण को तीवो मथान अनाले पाशिवो गोरांगा गुणेरा निधि को तागिले पाबो संगीरा संगे ये कोई लोगेला संग न पाइयो गांधे नरो समदास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित गौर हरि बोल धनंजय पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। श्रील गदाधर दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। श्रील श्रीनिवासाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो ये जो तीन महापुरुषों के जो तिरुभाव हैं, इनमें से गदाधर दास गोस्वामी का जो तिरुभाव है तो ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में हाँ, इनका नाम एक ही बार आता है, इनका आविर्भाव नहीं है। और धनंजय पंडित का भी तिरुभाव जो आज है, तो इनका भी आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है। तो आप जानते क्यों इनका आविर्भाव नहीं आता? अज्ञात है। गदाधरदास गोस्वामी का भी आविर्भाव अज्ञात है, धनंजय पंडित का भी आविर्भाव अज्ञात है, क्योंकि जब ये वैष्णव आचार्य प्रकट होते हैं संसार में तो कोई जानता नहीं, इसलिए कोई इनकी जन्मतिथि नोट नहीं करता। लेकिन जब इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं महान वैष्णव के रूप में, तो तिरुभाव की जो तिथि है ये भक्त लोग नोट करते हैं, तो इसलिए। लेकिन श्रीनिवास आचार्य का जो आज तिरुभाव है, इनका आविर्भाव भी आता है, तो साल में दो बार इनका नाम आता है आविर्भाव तिरुभाव के रूप में। लेकिन गदाधरदास गोस्वामी धनंजय पंडित का केवल एक बार ही नाम आता है। तो सबसे पहले गदाधरदास गोस्वामी के बारे में हम सुनेंगे समाधि पुस्तक से। गदाधरदास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मूल रूप में दो दल हैं, उनके संगियों के दो दल हैं। एक दल है द्वादश गोपाल, जैसे अभिराम गोपाल, गौरीदास पंडित, धनंजय पंडित, तो एक दल तो ऐसे भक्तों का है जो कि सखा हैं, और ये श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं सख्य भाव में। और दूसरा जो दल है वो क्या है, माधुरी रस के, माधुरी रस में जो डूबे हुए हैं वे भक्त हैं। मतलब जो राधा रानी की सखियां हैं, मंजरियां हैं, है ना, तो ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरुष रूप में है, लेकिन मूल रूप में वो जो है ना, हाँ, माधुरी भाव में है, सखियां और मंजरियां हैं। तो गदाधर दास गोस्वामी जो है ये संयुक्त रूप है चंद्रकांति गोपी के और पूर्णानंदा गोपी के। ये दो सखियां हैं, एक तो चंद्रकांति गोपी और दूसरी पूर्णानंदा गोपी, दोनों का सम्मिलित विग्रह गदाधर दास गोस्वामी है। तो आप भ्रमित ना होना कि गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित नहीं है, गदाधर दास गोस्वामी अलग हैं, गदाधर पंडित अलग हैं। गदाधर पंडित आप जानते हैं कौन है? श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित पंच तत्वों में से एक। मेरे सिर के ऊपर छत में जो पांच तत्वों का चित्र है, उनमें से गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। लेकिन गदाधर दास गोस्वामी जो है ये चंद्रकांति गोपी और पूर्णानंदा गोपी दोनों के सम्मिलित विग्रह हैं। और चंद्रकांति गोपी जो है ना, ये हैं क्या वास्तव में? राधा रानी के तेज का विस्तार है चंद्रकांति गोपी, और पूर्णानंदा गोपी जो है भगवान बलराम के जो है ना प्रिय सखी हैं। गंगाधर दास जो है चैतन्य महाप्रभु के भी संगी हैं और नित्यानंद प्रभु के भी संगी हैं, चैतन्य महाप्रभु के भी संगी हैं और नित्यानंद प्रभु के भी संगी हैं। कृष्ण से संबंध है, कृष्ण से संबंध है इनका, क्योंकि राधा रानी की तेज के विस्तार है, और बलराम जी से संबंध है इनका, क्योंकि बलराम जी की सखी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के ये संगी हैं। कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं भगवान चैतन्य कैसे राधा भाव ज्योति सुवलित है, कि जो श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी द्युति यानी तेज दोनों से संयुक्त है चैतन्य महाप्रभु। गदाधर दास जो है वही द्युति है, राधा रानी का जो तेज है वो गदाधर दास है। तो कभी कभी इनको श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य तेज का साक्षात मूर्ति कहा जाता है गदाधर दास गोस्वामी जो है। तो भगवान नित्यानंद के साथ जब भ्रमण कर रहे थे गदाधर, तो कभी कभी वो माधुरी प्रेम में इतने डूब जाते थे कि वो ब्रज की गोपी की तरह बोलना शुरू कर देते थे। नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य ने आदेश दिया था कि बंगाल में गौड़ देश में आप प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो। तो प्रचार कार्य में जो है ना, कभी कभी वो गोपी भाव में डूब जाते थे और वृक्ष की गोपी की तरह बातें करने लगते थे। तो एक जो है मिट्टी का घड़ा गंगा जल का भरा हुआ अपने सिर में रख लेते थे और मानो गोपी हो ऐसे वो बोलने लगते थे कि किसको दूध लेना है, कौन दही लेना चाहता है, किसको दही लेना है, किसको दूध लेना है। गंगा जल का जो घड़ा है वो सिर में रखा हुआ है और वो गोपी भाव में बोलने लगते थे तो बिल्कुल भूल जाते थे। भगवान नित्यानंद के जो मुख्य प्रचारक हैं उनमें से एक ये हैं, बंगाल में गदाधर दास ने असंख्य पापियों का उद्धार किया और नास्तिकों का और यवनों का उद्धार किया। तो एक बार कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए ये पागल होकर के नृत्य करने लगे और कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगे काजी के महल के सामने। बहुत खतरा काजी के महल के सामने जो है ना अकेले जाकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन करना, ये बहुत बड़े संकट की स्थिति है। तो वो जो मुसलमान काजी था तो बहुत गुस्से में जो है अपने घर से बाहर निकला इनको डांटने के लिए कि शांति भंग कर रहा है हमारे घर के आगे। परंतु जब देखा बहुत ही आकर्षक गदाधर दास का जो रूप था वो प्रेम में नृत्य कर रहे थे तो काजी जो है ना स्तंभित हो गया देख करके। उसको तो गुस्सा था बहुत। मुसलमान काजी उसके घर के आगे कोई कीर्तन करे है ना तो कितना गुस्सा वो होगा। लेकिन देख करके वो काजी इनका जो है ना रूप और इनका भाव देख करके स्तंभित हो गया और उसका क्रोध दूर हो गया। गदाधर दास ने प्रेम से उसका आलिंगन किया उस काजी का। देखो कितने दयालु। प्रेम से उस काजी का आलिंगन किया और कहा कि गौर नित्यानंद प्रकट हुए हैं सबका उद्धार करने के लिए दिव्य प्रेम के द्वारा और हरि नाम के पवित्र मधुर अमृत का वितरण करके। तो तुम क्यों नहीं हरि के मधुर नाम का कीर्तन करते हो। उसका आलिंगन किया और कहा कि तुम क्यों नहीं करते हो। तो काजी क्या बोला, काजी क्या बोलेगा काजी बोला कि मैं कल से हरि के नाम का कीर्तन करूंगा। उसने कहा मैं कल से करूंगा। तो काजी ने जब इस प्रकार से जब बोला तो ये सुन करके गदाधर दास प्रसन्नता में भर गए और बोले कल क्यों, तुमने पहले से ही आज